بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ناظرین السلام علیکم، آپ سبھی کو پروگرام خوش قسمت گرانہ میں خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. آپ سید جعفر علی صاحب اور معصومہ بتول صاحبہ، آپ کو اپنے پروگرام خوش قسمت گرانہ میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں بہت زیادہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کے آنے سے ہمارے پروگرام میں جو ہے چار چاند لگ گئے ہیں. اور سب سے پہلے تو ناظرین، ہمیشہ سلسلہ یوں ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی سیلیبریٹی سے جب آپ کی ملاقات کروائیں گے تو ظاہر بات ہے ان کا تعارف ہونا ضروری ہے. جی، آپ کی تعریف، آپ کا تعارف خود آپ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے، کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں؟
نام تو میرا آپ نے بتا دیا، تو میں پاکستان میں لاہور
شہر سے. تعلیم کے بارے میں، آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، کوالیفیکیشن کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟
لاہور شہر میں ایک پنجاب یونیورسٹی ہے، وہاں سے میں نے گریجویشن کیا تھا. سمپل جی، تو گریجویشن کے تقریباً ایک سال بعد ہی ہماری شادی ہو چکی تھی. جب ہماری شادی ہوئی تو میرا کوئی مذہبی رجحان اتنا نہیں تھا، لیکن شوق تھا مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا. تو جب خانم سے شادی ہو گئی تو یہ کیونکہ مذہبی پڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے اس طرف موٹیویٹ کیا، اگر آگت کیا کہ آپ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ جو میرے لیے بالکل نئی چیزیں تھیں، احکام نماز اس طرح کامل ہوتی ہے، یہ ہم اس کے یعنی جو بیسک چیزیں تھیں، بنیادی چیزیں تھیں، وہ انہوں نے مجھے بتایا.
بس میں ایک منٹ یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دینی تعلیم میں بیچنے کے لیے پورا سپورٹ اس کے والدین کرتے ہیں یا والدین کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ بات یہاں پر یہ بہت ہی اچھا لگے گا کہ ناظرین بتاتے چلیں ان کی وائف تھی کہ جنہوں نے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا اور اس دینی تعلیم کی طرف ان کا رجحان بڑھایا ہے. اور میں یہیں پر ہی معصومہ بتول نقوی صاحبہ، میں آپ کو بہت ہی تبریک پیش کرتی ہوں، بہت ہی مبارکباد پیش کرتی ہوں اس بات کی. واقعاً آپ تعریف لائق ہیں، لائق تعریف ہیں آپ اس بات کی کہ آپ نے ان کو اس دین کی طرف انکریج کیا. اور آپ اپنی تعلیمات کے بارے میں کیا بتائیں گی؟
جی بہت بہت شکریہ خیر النساء. میری ایجوکیشن تو سمجھ لیں میٹرک کے بعد اسٹارٹ ہوئی. میٹرک کے بعد پاکستان میں ایک حوزہ علمیہ سے میں نے اپنا درس شروع کیا، درس حوزہ شروع کیا، اور اس کے بعد وہاں سے پڑھتے پڑھتے ایران پہنچے، ایران میں ایڈمیشن لے لیا. اسی پورے دوران میں مثلا تقریباً 2001 میں نے میٹرک کیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک میں مسلسل دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں.
بہت اچھی بات ہے. اچھا سید جعفر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اس فیلڈ میں آئے، آپ نے یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے یونیورسٹی کو چھوڑا اور دینی حوزے کے جانے پائے، کیسا لگا آپ کو جب آپ نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈیسیشن آپ نے لیا کہ میں نے اب دینی تعلیم حاصل کرنا ہے؟ تو آپ بہت خوش ہوئے یا بہت زیادہ پشیمان ہوئے کہ میں نے بہت برا کیا، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، یا اس کے بالکل اپوزٹ آپ بہت زیادہ خوشحال ہوئے؟
سب سے پہلی بات یہ، میں اس تعلیم کو چھوڑنا جب قدم ہی رکھا تھا اس حوزے تعلیم میں، تو میں بہت خوش تھا. اور جب مجھے یہاں سے کامیابی ملے، لیکن کچھ سمجھ آنے لگا، تو اور بھی زیادہ خوش ہوا کہ یار میں اس قابل ہوں کہ کچھ سمجھوں. وہ جو چیزیں جو میرے پہلے دماغ میں نہیں تھی، جنہیں ہم گناہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم روزمرہ میں چھوٹے چھوٹے جھوٹ، چھوٹی چھوٹی ایسی عادتیں جو ہمارے اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہیں، جو ہمیں گنتی نہیں کی عادتیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ان سے آسنائی ہوئی کہ یہ عادت ہمیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی ریزی چیزیں جو تھی، ان سے جب انسان پڑھتا 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 آگے جاتا ہے، تو انسان کو خوشی ہوتی جاتی. جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا ہے، وہ اپنے اندر ایک خوشی بھی محسوس کرتا ہے، اخلاقیات ہر چیز کے اندر پیدا ہوتی شروع ہو جاتی. تو جو رسمی سسٹم میں ہمارے نہیں ہیں، وہاں صرف ایک تاریخی بتائی جاتی ہیں کہ یہ تاریخ ہے، اس کو پڑھ لو تو آپ مسلمان، لیکن جو عقائد وہ یہیں پڑھائے جاتے ہیں.
بس آپ یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ میں دینی حوزے کی جانب جاؤں، تو آپ یوں بہت زیادہ خوش ہوئے. اور آپ لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے اس چیز کے بارے میں کہ جو دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ مثلا اس کو لے کے چلنا چاہیے یونیورسٹی پڑھائی کے ساتھ یا پھر نہیں؟
کہ آج ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہر بندہ اسی طرح سوچتا ہے، ایک اچھا جو اس کی آمدن ہو، انکمنگ ہو. لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اگر یہ اچھا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے، کل کو یہ اچھا بھی رہے گا یا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کے اندر کامل انسان کی خوبیاں رکھتا ہے. جیسے جیسے وہ پڑھتا جائے، ڈاکٹر انجینئر بڑھتا جائے، شاید اس کا اخلاق اچھا نہ، لیکن جیسے وہ دینی تعلیم حاصل کرے، آٹومیٹکلی بات ہے کہ اس کا اخلاق اچھے سے اچھا ہوتا جائے گا. تو میری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر بچے کو چاہے اپنی پڑھائی کے بعد کرے یا ماں باپ کا یہ پہلا فرض ہے کہ اس کو دینی تعلیم اپنے گھر سے شروع کرے. ہمارے یہاں بس انگلش اسکول میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جی اب یہ سلیبس ختم کر لو. اس کے بعد ہمارے انفارچونیٹلی ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں کوئی ایسا سلیبس نہیں ہے کہ جو بچے کی اسلامی طور پر کامل ذہن کی جواب دے سکے، اس کو ایک ذہنی طور پر تیار کر سکے کہ ہمارا یہ اسلام ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، بتانا چاہیے. ایسی کوئی ہمارے یہاں कोई एकेडमी, कोई ऐसी तालीम ही नहीं है पाकिस्तान
सही
में अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, कि बच्चे के जो जहन है उसको इस्लामी तर्ज पर लाया जाए, कि उसकी
और
फिक्र इस्लामी हो जाए।
ये मैं आपके जो है उससे मैंने यूं कैच किया है आपकी बातों से कि आप यूं कहना चाह रहे हैं कि अगर हम दोनों को साथ लेकर चलें तो एक इंसान सक्सेसफुल, जैसे हम कह सकते हैं, मौफ़क इंसान बन सकता
जी
है।
जी बिल्कुल बेहतर।
और नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं एक छोटा सा प्लेबैक। जी तो नाज़रीन चलते हैं एक मरतबा फिर मासूमा साहिबा के पास। जी मासूमा, आप इस प्लेबैक में, इस क्लिप में जब हम देख रहे थे तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज़ में आपने अपने अपने हस्बैंड का जो है इस्तकबाल किया, वेलकम किया उनको। फिर उसके बाद आप किचन चली गई, फिर आपने अब कुछ बनाना शुरू कर दिया। ये पूछना चाहूँगी कैसे मैनेज करती हैं इस चीज़ को, घर के काम को भी और बाहर सब इन तमाम चीज़ों को कैसे लेकर चलती हैं?
बिलाखिर खातून की सबसे पहले जिम्मेदारी तो उसका अपना घर है,
बेशक
तो तरजीह यही होती है कि पहले अपना अपने शौहर को और अपने घर को संभाल सकें, इनको अच्छे तरीके से प्रॉपर टाइम दे सकें। उसके अलावा हमें बहैसियत है मुसलमान, क्योंकि हर मुसलमान पे तालीम को भी फ़र्ज़ करार दिया गया है, हक है हर इंसान का, उसके पीछे भी जाना चाहिए। बिलाखिर खातून को हर महाज पे जाना पड़ता है,
सही
काम भी
बात।
करना पड़ेगा, तालीम भी हासिल करनी पड़ेगी और अपने घर को भी अच्छे तरीके से मैनेज करना
अच्छा
पड़ेगा।
ये बात जो है ना कि हदीस में है कि जहादुल मिरआ हुस्नु तबाउल, अच्छा इसको और बाहर के कामों को आप किस तरह आपस में जो है बयान कर सकती हैं कि ये दोनों चीज़ बिल्कुल अपोजिट ही है एक यार
नहीं
इंसान लेके चल सकता है इस चीज़ को।
नहीं बिल्कुल साथ लेके चल सकते हैं, और ख़वातीन में इतनी इस्तेदाद है कि वो अपने घर को भी चला सकती हैं और घर से बाहर भी जो है अपना मसलन अपनी तालीम हासिल करना या बाहर किसी किस्म की जॉब करना या किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ को वो जारी रख सकती हैं, अपने घर के साथ साथ अपने बच्चेदारी के साथ अपने बच्चों को संभालना, अपने घर को कवर करना,
सही बात है।
बिलाखिर ये ख़वातीन की जिम्मेदारियों में से है।
अच्छा मासूमा, मैं यहीं पर ही आपके हस्बैंड और आपके बेटे से पूछना चाहूँगी, वो आपसे कितने खुश हैं। बेटा आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे, ना
हेलो,
नाम
नाम बताओ
बताएं।
आंटी को, नाम बताओ आपका क्या है?
बेटा आपने नाम बताएं।
बहुत छोटा है, शरारती है अभी नहीं।
अच्छा जी जाफर भाई, आप क्या कहते हैं, अपनी वाइफ से खुश हैं या नहीं हैं? ये बाहर जाती हैं तो गुस्सा तो नहीं आता, या
बिल्कुल
परेशान तो नहीं जाते हैं, या चली गई अब घर में खाना नहीं बना हुआ, ये घर के काम छोड़ के चली जाती हैं, क्या बताएंगे आप?
ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे की कुमक करते हैं, मदद करते हैं हर काम में। अगर इनके एग्जाम्स हों या इन्हें बाहर कोई बरनामे पर जाना हो तो मैं जितनी मेरी रसाई होती है मैं उस हद तक इनकी
बताए,
कुमक करता हूँ। तो ये भी किसी हद तक
बहुत ज़्यादा दूसरे ही कोऑपरेटिव हैं आप।
जी हाँ,
बिल्कुल,
कोऑपरेटिव
अगर
है।
मेरे एग्जाम्स हो या मेरा टीवी का प्रोग्राम हो या मुझे ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो मतलब मेरे हस्बैंड मेरी इतनी कुमक करेंगे, हेल्प करेंगे कि बरनामा है, प्रोग्राम है, तो मैं इनसे कहूँगी कि हैदर को आप रख लें, आप मैनेज कर लें। तो ये इनके साथ थोड़ी ज़्यादती भी हो जाती है कि अपनी तालीम हासिल करने के साथ साथ सौ अपनी इंसान की मसरूफियात होती हैं, तो
अच्छा
ये
मैं
बच्चे को
यहीं
भी।
पर, आपने जो अभी बात की कि आप बाहर जाती हैं, कम्युनिकेशन का काम है आप के बहुत सारे, यानी हतमन आपकी इनकम भी होगी, जहां आप बाहर इतनी मसरूफ़ भी हैं इनकम भी होगी, तो भाई आपको बुरा नहीं लगता कि मसलन बीवी की तरफ से कोई इनकम आया है और आप उसे खर्च करें? क्योंकि हमारे पाकिस्तान के माहौल में अमूमन ये मर्दों के लिए बहुत ही बुरा समझा जाता है कि वो मर्द जो हैं घर में बैठें या बीवी जो कमा कर लाएँ और बीवी के जो है उसको खर्चा करें, क्या
ये
कहते हैं?
बीवी के कमाने को समझना जहाँ तक है उसमें इस्लाम की भी इजाज़त है कि बीवी कमा सकती है, दोनों घर को चला सकते हैं, तो काम करने की इजाज़त तो है शरई तौर
और
से ही।
खुसूसन आजकल के इस दौर
और
में कि जब
आजकल ये एक
महंगाई
हमारा
बहुत ज़्यादा
जी
है।
और ये आजकल हमारा एक माशरती अमल है, क्योंकि बच्चे की जिम्मेदारी माँ पे और बाप दोनों पे इकट्ठी होती है।
बेशक,
और इसी तरह अगर आप सलाह मान सकते हैं कि आपकी बीवी आपके साथ काम कर रही है, कुछ इनकम आ रही है, आपके उस सारे मुबादला आ रहा है, तो बेहतर के बच्चे की परवरिश बेहतर होती है। अगर बात जहाँ तक आप कहने पैसे खर्च करने की, तो अक्सर खानुमान ही घर में पैसे खर्च करती हैं, सारा कुछ इन्हीं के पास होता है।
यहाँ पे
और
मैं
आप
एक
तुम क्या
बात
कहेंगे खर्च करने के बारे में? लगता है बहुत ज्यादा खर्च करती है, तो इन्होंने इस पॉइंट को बहुत
नहीं,
लिया
यहाँ मैं एक बात करनी चाहूँगी ख़वातीन और मर्द के हवाले से कि सिर्फ मुआशी जिम्मेदारी सिर्फ मर्द पर नहीं है कि वो घर के इक्तसाद को चलाए,
सही
अगर
बात है।
ख़ातून में इतनी एबिलिटी है वो घर में इनकमिंग कर सकती है या उसके और ज़राए हैं घर में पैसा वगैरह आ सकता है, तो ख़ातून को ये करना चाहिए। आज मुआशरे की आधी आबादी ख़वातीन की है, और अगर
बेशक
आधी आबादी बेकार बन के घर में बैठ जाए और आधी आबादी के जिम्मे बाकी आबादी का भी काम हो, खर्च हो, तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी को ऊपर सतह पे लाने के लिए, थोड़ी उसको अप करने के लिए, आप दोनों को जो है मियाँ बीवी दोनों को वाकई एक कड़ी एक गाड़ी के दो पहियों की मानद है, इन्हें हर
बेशक
जगह पे ज़िंदगी के हर पहलू में इन दोनों को साथ साथ चलना पड़ेगा। अगर एक पहिए पे जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो आपकी गाड़ी नहीं चल पड़ेगी।
बेशक। अच्छा आप अपने आप को इस बेहतरीन मुबल्लिग होने के साथ साथ एक बेहतरीन माँ समझती हैं या नहीं?
कोशिश करते हैं, समझना तो बात की बात है, यानी पहली तरजीह यही होती है कि हमारे बच्चे के साथ हमारी हर चुन खातून की सबसे पहली जिम्मेदारी जो है उसकी अपनी औलाद की परवरिश है। अगर हम इस परवरिश को दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं दे सकें, मेरा ख्याल है कि मेरी तबलीग, मेरा एज अ मुबल्लिग या एज अ स्टूडेंट या
वो
इनकमिंग
सब
लाना कोई चीज़ भी फ़ायदा
कुछ
नहीं
रायगान
रखता,
जाएगा।
रायगान जाएगा। क्योंकि मैं इतने अगर काम करती हूँ तो उनकी एक वजह, सबसे बुनियादी वजह ये होती है कि मैं माशरे को एक दुरुस्त और क्या कहते हैं तरबियत याफ्ता इंसान दे सकूं, और
बेशक।
अगर मैं इसकी तरबियत नहीं कर सकूंगी तो मेरे सारे काम जाया
अच्छा
जाएंगे।
बेटा एक बताओ, फिर मैं आपसे पूछूंगी आपका नाम क्या है।
हैदर,
जी खाले को नाम बताओ।
आंटी का नाम नहीं बताएंगे बेटा, नाम बताएं आप।
बोले फुआत हैदर।
फुआद हैदर, कितना खूबसूरत नाम है। क्या इसके एक माना कुछ पता है आपको, इसकी मीनिंग क्या है? नहीं पता है? आपका नाम किसने रखा आपको पता है? मम्मा ने रखा है, बाबा ने रखा है,
सनी
इतना
चाचू
प्यारा
ने,
नाम।
सनी चाचू ने।
अच्छा चाचू ने आपका नाम रखा है। अच्छा आप बच्चों को कितना टाइम देते हैं घर में?
सुबह के वक्त तो ये खानों के साथ होता है अपनी माँ के साथ, और जब घर से मैं तो मदरसे से वापस आता हूँ, जो मेरे पास फारी वक्त 1 या 2 घंटे होते हैं अपने दर्स ख़त्म करने के बाद, वो इसी के साथ बिताते हैं। और कोशिश ज़्यादा होती है कि अपने बच्चे के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं, क्योंकि ये अकेला है यहाँ पे, इसका कोई दूसरा बहन भाई भी नहीं, और बच्चा इस तरह मसरूफ़ भी रहता है, और माँ बाप से यानी कि एक लगाव भी बन जाता है, एक जिनसी और एक
जी हाँ,
दिमागी,
अटैच होते हैं
दोनों तरह का
बच्चे, ज़ाहिर
कनेक्शन माँ बाप
होते
का बच्चे
हैं।
के साथ बन जाता है। अगर आप बिल्कुल बच्चे को टाइम देंगे वो इतना फ्री हो जाएगा कि आपकी बात नहीं मानेगा, अगर आप उससे ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो आपकी बात सुनेगा।
अच्छा, यहीं पर मैं एक सवाल, ये आप दोनों से ही होगा, मेरा खुशकिस्मत घराना जो हमारा नाम है इस प्रोग्राम का, खुशकिस्मत के आपकी नज़र में खुशकिस्मत यानी क्या? खुशकिस्मत को किस तरह तारीफ करें, किस तरह इसकी को डिफाइन करेंगे आप?
देखिए, खुशकिस्मत से यानी ये तो खुशकिस्मत तो हर इंसान की होती है, उसे खुश करना ये खुदा के कर्म में होता है, किसे कुछ दे कर्म वरम ये सब कुछ खुदा के पास हो। लेकिन इंसान जहाँ तक अपनी कोशिश करता है कि इसमें अपनी किस्मत को बेहतर से बेहतर बनाऊँ, वो इंसान की अपनी एक रियाजत और अपनी एक स्ट्रगल होती है।
सही,
और चूँ मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से बहुत कंसर्न है, एक कोई भी काम करना हम एक दूसरे से पूछ के करते हैं, बता के करते हैं, मुझे ये करना है, पैसा करना है, पैसा, एक दूसरे से सजेशन से, कि इंसान की ज़िंदगी में माँ बाप के बाद अगर कोई सबसे अच्छा फैसला इंसान मर्द के लिए कर सकता है तो उसकी अपनी बीवी है,
सही
जो उसकी
बात
एक
है,
अच्छी राय, जिसका नुकसान दोनों को होता है। अगर मर्द कोई गलत काम करता है तो उसका ज़र्र हम दोनों तो तीन बच्चों तक पहुँचता है, लिहाजा एक दूसरे के लिए किसी किस्म की कोई मुनाफ़त नहीं रखते, लालच नहीं रखते, बिल्कुल दिल से और दिमाग से सोच के ही फैसला देते हैं। तो जब ये दोनों फैसले मिल जाते हैं तो इंसान का जो किस्मत है खुद ब खुद खुश होती जाती है, इसलिए
बेशक।
खुशकिस्मत हो जाती है।
क्या कहेंगे आप, खुशकिस्मत यानी ऐसा कोई शख्स कि जिसके पास सब कुछ है, दुनिया की हर फैसिलिटीज उसके पास मौजूद है, वो खुशकिस्मत है, या जिसके पास नहीं है लेकिन दो कमरे के घर में वो बहुत ज़्यादा खुश है,
नहीं,
आप उसे क्या कहेंगे, वो
मेरी नज़र में
खुशकिस्मत है या नहीं?
खुशकिस्मत घर वो है कि चाहे वो हज़ारों की क्या कहते हैं कमरों का मिल्कियत रखता हो, या जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी हो या ना हो, खुशकिस्मती उसको कहते हैं कि आप एक दूसरे पर एतमाद करो, एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हो और एक दूसरे के लिए वाकई वो वसीला बनो कि जो आपको खुदा की तरफ लेके
यानी
जाए।
आप जो मादियात, जो दुनिया में तमाम चीज़ें हैं उनको आप दर नज़र लेती हैं कि यही खुशकिस्मती का
नहीं,
बाइस है
बिल्कुल
या
भी
नहीं?
वो खुशकिस्मती नहीं होती है। बारहा देखने में आया कि इंसान के
सही
पास
बात है,
दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया की हर नेमत
हर
मौजूद है,
फैसिलिटीज
लेकिन
उसके
उसकी
पास।
ज़िंदगी में सुकून नहीं है और उसकी ज़िंदगी बेराह रवि और गलत, यानी उसकी ज़िंदगी तबाह है, हर
सही,
चीज़ के होते हुए भी उसकी ज़िंदगी तबाह है। तो मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती इसी में होगी कि आप एक दूसरे की मदद करो कि अच्छाई की तरफ चल सको।
जी हाँ नाज़िम, यह है एक खुशकिस्मत घराना। चलते हैं, देखते हैं एक अगला क्लिप।
Thank you.
जी नाज़रीन, खुशकिस्मत घराना वाकई बहुत ही ये आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग है। और आप तमाम देखने वालों के लिए भी यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों का घराना भी बहुत ही खुशकिस्मत घराना हो। जी जाफ़र भाई, मैं यहाँ ये देख रही थी आप किचन में गए हेल्प की, हमेशा हेल्प करते हैं या सिर्फ कैमरे के आगे आज आपने हेल्प की
नहीं,
है?
हमेशा कैसा ही है।
नहीं, वाकई हेल्प
इसी
करते
तरह
हैं
ही है,
हमेशा, बिल्कुल।
सच बोल रही हूँ बिल्कुल।
खास तौर पर जब मैं मसरूफ हूँ तो फिर हेल्प करते हैं, हाँ जब मेरे पास टाइम हो तो फिर नहीं करते।
अच्छा, घर में मेहमान आना, सिला रहम करना, जिसकी हमारे दीन ने बहुत इसके ताकीद की है, कैसा लगता है? मैं अपने अजीज व अकारिब से मिलना, उनके घर जाना, उनका हमारे घर आना।
हर लिहाज से बेहतर है, माशरती अमल से भी बेहतर है, इस्लामी अमल से भी बेहतर है कि आप दूसरों से राबते रखें,
सही,
आना जाना रखें, दूसरों की मुसीबतों का पता चलता है, खुशहाली का पता चलता है। जब आप किसी दूसरे को देखते हो तो आपको, अगर वो खुश है तो आपके कुदरती तौर पर खुशी होती है, इसके कुछ माना नहीं है।
अच्छा
बिल्कुल,
मासूमा, आपके शोहर अक्सर मेहमान ले आते हैं अपने साथ या
अरे ये बहुत
फिर?
ही ज़्यादा मेहमान नवाज है,
अच्छा तो
बहुत ही।
फिर देखिए, मर्द तो मेहमान ला लेकर आ जाते हैं, मसला उनके लिए कुछ नहीं होता, मसला ख्वातीन के लिए होता है कि उन्होंने पीछे उनके जो है खातिर तवाजो करनी होती है,
बिल्कुल
उनके लिए कुछ बनाना होता है। तो आपकी वाइफ उस वक्त जो है बिल्कुल खुश होती हैं या फिर उनको बहुत गुस्सा आता है कि हाँ जब भी आते हो एक मेहमान ले आते
नहीं, जब भी आता तब तक मेहमान ही लाता,
हो?
क्योंकि हमारे दर्स होते हैं तो कोई ना कोई दोस्त हम बजाएं या हम किसी और जगह जाएं, क्योंकि वक्त कम होता है, या हम उनके घर चले जाएं या हमारे घर चले।
अच्छा, जिस तरह की एक डिस्कशन होती है
जी
पढ़ाई
हाँ,
के लिए,
पढ़ाई की होती
सही,
है,
एक
ठीक
मुबाइसा
है,
जिसे कहते
मोबाइल
हैं।
सर से कहा जाता है। तो बाकी जो लोग होते हैं उनके पास उनके घर दूर होते हैं, मेरा घर जो मदरसे के नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं कहता यार आप मेरे घर पर आ जाओ, तो यहाँ पर हम वैसा कर लेते हैं, जो हमारे तकरार है, जो भी हमें दर्स को करना है, वो हम अपने घर पर कर लेते हैं, किसी दूसरी जगह जाएंगे टाइम के साथ ज़्यादा यूज़ होगा, इससे सब कुछ जो है यानी कि मुश्किलें आ जाती हैं उसमें। तो खानों का ये चाय वगैरह जो होती है वो तो होती है,
वो
अगर
तो
बाजी
होता
वक्त
है।
खानों के पास टाइम ना हो तो बंदा खुदा खुद ही करता है।
आप क्या कहेंगे, अच्छा लगता है मेहमानों का आना घर पे?
नहीं वाकई अच्छा लगता है,
लेकिन
लेकिन
आप ये, इस लिहाज से मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ रहे
बिल्कुल
हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ भी बहुत
बिल्कुल,
ज़्यादा है घर के अंदर घर के बाहर, तो उस वक्त कैसे मैनेज करती हैं इस सब चीज़ को, मेहमान
थोड़ा
को भी?
प्रॉब्लम तो होता है कि वक्त बे वक्त अगर मेहमान आ जाएं तो आपकी जो अपना डिसिप्लिन होता है, आपने जो रूटीन बनाई होती है आप उससे
जी
निकल जाते हो। उसमें ये होता है कि मुझे वाकई कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि या मैं अपनी स्टडी को मुझे फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, या रात को लेट सोएं तो फिर अगले दिन सुबह क्लासेस में बंदा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होता है, थोड़ी बहुत डिस्टर्बिंग होती है लेकिन इतनी नहीं है कि इंसान मैनेज ना कर सके।
जी आजकल आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं?
आजकल एक्टिविटीज़ ये हैं कि सुबह मदरसे, मदरसे के बाद कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं हमारी, जो
जी
तजवीद कुरान और उलूम कुरान के बारे में, वो मैंने एक्स्ट्रा से लिए, कंपलसरी नहीं है, वो खुद से इंसान अगर लेना चाहे तो वो लेता हूँ। तो आजकल तो मेरी मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा हो, यानी सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, शायद रात को
सुबह छः
सात
बजे
आठ और 9 बजे वापस आऊँ, क्योंकि वापस आके घर जाना मुश्किल होता है, इस्तराहत कर लो उसके बाद थकावट, फिर घर जाना, बच्चे को देख के दिल नहीं करता, इस वजह से मैं लेट नाइट घर आता हूँ देर को, शाम को 7-8 बज जाते हैं, दर्स पढ़ते पढ़ते ये वो। तो खाना वगैरह मदरसे से मिल जाता है, खान के यहाँ अगर कोई मुबासा वगैरह तो फिर खानों को थोड़ी तकलीफ़ करनी पड़ती है, कोई दोस्त आ जाए, चाय भाई है वो।
कुरान की जाने की किस कदर अहमियत देते हैं कि कुरान को आप यूँ समझ लीजिए, जैसे आपने कहा कि कंपलसरी
है तो सही
सब्जेक्ट
है
है, या आप
थोड़ा।
उसको लाजमन चाहते हैं कि आपके वो दरसों में शामिल हो एट द टाइम, आप जब दूसरे तालीम भी पढ़ रहे हैं जिस तरह की आप तफसीर पढ़ रहे हैं, खुद कुरान को आप शामिल रखना चाहते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ या नहीं, आपकी तवज्जो
जहाँ
इसकी
तक
तरफ
अगर
है?
मेरे बस में हो कुछ सिस्टम ऐसा कि मैं
जी
हर मदरसे में कुरान की बेसिक तालीम को लाजमी करार दे दूँ, जैसे
सही,
हमारे इंग्लिश को बेसिक चीज़ कहा जाता है ना,
जी
मैं
सही बात
उससे
है,
भी ज़्यादा अहमियत कुरान के अल्फाज को दूँगा, कि
बेशक
कुरान कम से कम 1-5-7 क्लासों तक हर बच्चे को 1 या 2 बार हिफ्ज़ होने चाहिए, और बामाना कि जब इंसान कुरान को याद करता है इसमें तो एक अपनी तासीर है, लेकिन ये उसी पता जो इसे याद या हिफ्ज़ करता है, जब इसके बारे में फिक्र करते हैं वो टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। एक दिन मैं बैठा हुआ था एक आयत पर फिक्र कर रहा था, यहाँ तक कि सुबह के 5 बज गए, तो मुझे ये पता ही नहीं चला यार सुबह के 5 बज चुके हैं, बाहर सिर्फ सूरज निकल चुका है, इस कदर
अच्छा।
उस कुरान के अल्फाज में मैं खो चुका था।
अच्छा, आप अपने बेटे के लिए आपने क्या सोचा है कि आइंदा इसे हाफिज़ कुरान बनाना चाहते हैं या फिर इसे कोई कुरानी जो एकेडमी होती है वहाँ भेजने के बारे में क्या सोचा है? कोई अब आपने कोई स्टेप उठाया है इसके लिए या
जी
नहीं?
हमारे सारे स्टेप मेरे बेटे के लिए थे यहाँ आना, क्योंकि मेरी उम्र निकल चुकी थी बचपन की,
सही
तो मैं
बात,
सोचा जो चीज़ मुझे नहीं मिली मेरे माँ बाप की तरफ से, थोड़ी बहुत तालीम हर माँ बाप देता है,
सही
लेकिन
बात है,
इंसान को
लेकिन
कामिल
हर
बनाने के
किसी ने
लिए
अपने शऊर के मुताबिक जो होती है वो देनी है, बेहतर है कि हम अपने शऊर को बढ़ाएं। हमारी वो उम्र निकल गई कि जैसे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि बचपन का लिखा पत्थर पे लिखा है, और जवानी का लिखा पानी पे लिखा है,
सही
यानी अब
बात है,
बचपन में जो तरबियत होती है वो
सही
जवानी
बात
या
है,
नौजवानी में या हमारी उम्र में आके वो तरबियत नहीं हो पाती।
सही
तो हम
बात है,
चाहते हैं कि जो खामियां हम में रह गई, जो कमी हम में है, वो आइंदा इस बच्चे में ना हो, ना इस लिहाज दीन, ना लिहाज मानवियत, ना किसी भी लिहाज से इसके अंदर वो
कोई
चीज़
कमी ना
ना
रह
कमी
जाए।
ना रह जाए,
अच्छा
कि ये
तुम्हारी
वाकई इमाम
अपनी,
ज़माना का सिपाही बन सके।
हाँ मौसमा, आप अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताएं,
जी
आजकल क्या कर रही हैं?
सबसे पहली
बिल्कुल को
तालीम
देखो,
जो है मेरी एक्टिविटी तो मेरी एजुकेशन है,
सही बात है,
कि मैं हौजे की तालीम के साथ साथ यूनिवर्सिटी की तालीम भी अपने साथ साथ कंटिन्यू किया हूँ। तो और
अच्छा
दूसरे ये कि ट्रांसलेशन कर रही हूँ यूनिवर्सिटीज़ के लिए,
अच्छा
पर्शियन टू उर्दू कर रही हूँ,
माशाल्लाह,
और तीसरा ये टीवी प्रोग्राम्स वगैरह। ये थोड़ा ट्रांसलेशन का काम होता है कि वो थोड़ा ज़्यादा होता है, दिक्कत तलब होता है,
सही
उनको
बात है
टाइम चाहिए होता है।
जी। जाफर भाई, आप न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
न्यू जनरेशन को ये कि लाजम नहीं कि मैं कहता कि हर बंदा आलिम बन जाए और जनाब कुरान में डूब जाए, कुरान ये नहीं कहता सिर्फ मुझे ही हासिल करे, लेकिन कहते इस कदर तक मुझे हासिल करके गुमराह ना हो जाओ। आप डॉक्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बखुदा मैं ये कहना चाहूँगा कि कम अज़ कम इस्लाम का दामन नहीं छोड़िए, इस कदर अपने आप को तालीम ले लीजिए कि आपको किसी वक्त
बैठो,
किसी काफिर या किसी से बरखोद हो, मुलाकात हो, तो हद कल आप उसको जवाब दे सकेंगे मैं मुसलमान हूँ, अपने आप से जाहिर कर सके, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने अमल से, इतनी तालीम हासिल चाहिए आपके पास कि मैं मुसलमान हूँ, कोई आपको देख के ये कहे कि आप मुसलमान हैं, बस
सही।
इस कदर आगाही होनी चाहिए हर जवान को और उस पर अमल पर होना चाहिए।
मासूमा साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। कोई और मैसेज हमारे नौजवानों को आप देना चाहेंगे इस खुशकिस्मत घराना के थ्रू?
नौजवानों के लिए तो मैसेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यह है कि अगर कोई भी मुआशरा चाहता है कि मैं बहुत देर तक कायम रहूं या अपने आप को तरक्की की उस राह पर ले जाऊं कि जहां लोग मुझे देखें, तो वो एक इस्लामी मुआशरा है कामिलन, एक माशरती मुआशरा है। इसके नौजवानों के लिए चाहिए कि हर तरह से जहाँ भी वो अपनी फील्ड में है, कामयाब होने के बाद या कामयाब होने से पहले या काम होने के दौरान,
सही,
इस्लाम से आशनाई रखें, चूँकि ये वो मुआशरा है जो इंसान के अखलाक को बेहतरीन करता है। और कोई भी एक मुआशरा चाहे वो कितनी तरक्की कर ले, कितने ही पैसे क्यों ना कमा रहे, कितने ही अरूज पे ना चला जाए, जब तक उसका अखलाक बेहतर नहीं होगा वो मुआशरा कभी भी अपनी ज़िंदगी को
ये आप इस
एदामा नहीं दे
टाइम
सकता,
यूरोप
बरकरार
में
नहीं रख
देख लें,
सकता।
वेस्ट देख लें, मौशी लिहाज से, इकोनॉमिकली तो वो देख लें दुनिया में सबसे आगे जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर अखलाकी बुराइयां देखें। क्या कभी कोई मुसलमान चाहेगा कि उनके बच्चों की तरबियत वैसी हो कि जैसे यूरोप में पलने वाले नौजवानों की हो रही है? क्या हमारे बच्चों में, हमारे नौजवानों में वो अखलाकी बुराइयाँ होनी चाहिए, या हम उन्हें बर्दाश्त कर सकते हैं जो एक यूरोपियन नौजवान में है?
बस ये इस्लामी
हमें
तालीमात ही हैं,
इस्लामी तालीमात को ना सिर्फ हासिल करना चाहिए बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी पे 100% जो है अप्लाई करना चाहिए।
सही
जब
बात है,
हम इनको जो है फॉलो करेंगे इस्लामी तालीमात को, तभी जो है हम हकीकी मुसलमान बन सकेंगे, और हमारा मुआशरा भी तभी मुस्लिम मुआशरा बनेगा, और ये वही मुआशरा होगा कि जो हमारा मकसूद है, जो हमारा
जी।
मतलूब है,
और इस्लामी तालीमात हासिल करके ही इंसान एक अपना एक खुशकिस्मत घराना, एक
घराना बना
खुशहाल
सकता है।
घराना
बिल्कुल
बना सकता
बिल्कुल,
है।
बिल्कुल।
बयान कर सकते इस्लाम के तवस्सुल से, इसके जरिए से ही एक घराने से लेकर एक मुल्क से लेकर एक जहान तक जो वो तश्कील पा सकता है
देखिए बेशक
खुशकिस्मती के लिहाज से,
इस्लाम से बढ़कर,
एक घर से
और
शुरू होकर एक मुल्क तक चला जाता है।
बेशक
बिल्कुल इस्लाम से बढ़कर किस मज़हब में या किस मुआशरे में या कौन सी तालीमात में एक घराने को अहमियत दी गई है, जिसमें बीवी को शौहर के हकूक़ बताए गए हैं और फ़राइज़ बताए गए हैं, तो शौहर को बीवी और के हकूक़ और फ़राइज़ समझाए गए हैं, बच्चों की तरबियत का बताया गया, तो रिश्तेदारों के हकूक़ बताए गए हैं, हमसायों के हकूक़ बताए गए। जब हमें एक मुकम्मल सिस्टम बना के दिया जा रहा है इस्लाम में, तो फिर हमारे लिए जो वो क्या कहते हैं, बाअर्जिश चीज़ है, एक अर्जिशमंद जो चीज़ है, हमारा अर्जिशमंद ज़िंदगी, एक खुशकिस्मत घराना तभी बन सकता है जब हम इस सारे सिस्टम को अप्लाई करें, जब हम इन्हीं एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन रूल्स की जो है फॉलो करेंगे। इसके अलावा
और जो है इस्लाम हमारे पास एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की तरफ से एक ऐसी नेमत है कि जिसके ज़रिए से हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं,
और
और
आखिरत में
फुल
भी,
गारंटी हम इस बात के दे सकते हैं कि हम
जी
आखिरत में भी अगर
इस्लाम
इस
एक
पर
कामयाब
अमल
रास्ता है,
करें
इस्लाम
तो
एक
हम
वाहिद वो कुलिया है
बिल्कुल
जिस पे अमल
पुराना
करने के बाद इंसान अपने घर से लेकर अपने मुल्क से लेकर जहाँ तक को संवार सकता है, क्योंकि
सही।
इस्लाम मुआशरती है। और सबसे ज़्यादा कोई भी आप मज़हब उठा के देख लें, खुशकिस्मती घराने से लेकर, यानी कि एक छोटे से घर से लेकर 3 अफराद, 5 नफर, 10 अफराद के लेकर लाखों करोड़ों तक चले जाएं, इस्लाम ने हर के लिए एक मुनज़्ज़म कानून रखे हैं
बेशक
अखलाक के, हकूकुल इबाद के, हर तरह से, सिर्फ इस्लाम को पढ़ने उस पर अमल करने की देर है।
बिल्कुल,
आज हम पीछे चले जाएं हमारा इस्लाम कहाँ था, चूँ
हाँ
आहिस्ता आहिस्ता नौजवान खासतौर पर जो जवान नस्ल है वो इससे दूर होती जा रही है
मुसलमान हैं लेकिन
जी।
इस्लामी तालीमात के वो
आसना ही
फॉलो
काम
नहीं
है
कर
हमारा,
रहे।
सही। आपके नज़रियात जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आप लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और आपके यहाँ पर आने का एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगी। यहीं से
बिल्कुल
हम अपने प्रोग्राम का भी अख्तिताम करेंगे, लेकिन जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने सेलिब्रिटी को, हम अपने मेहमानों को एक सहार आलमी नेटवर्क की जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे। यह सहार आलमी नेटवर्क की जानिब से एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे मेहमानों के लिए, आप अपने खिदमत में कबूल फरमाएं।
थैंक यू,
बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। जी तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। एक मरतबा फिर आपसे नए सेलिब्रिटी के साथ, नए मेहमानों के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।